एक बार फिर से ओम शांति। कितना सुंदर लगा बाबा। बहुत बार हमें टाइटल देते हैं ब्राह्मण कुलभूषण, भूषण या आभूषण, जब उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो उसका अर्थ है कि आप ब्राह्मण कुल का सौंदर्य है, डेकोरेशन ऑफ द ब्राह्मण क्लैन। ब्राह्मण कुलभूषण को ऐसा ट्रांसलेट करते हैं, या ब्राह्मण कुल का सौंदर्य है, यानी आपकी उपस्थिति ब्राह्मण कुल की सुंदरता को बढ़ा देती है। चाहे हम कहीं पे भी हों, अपने कमरे में हो, किसी के साथ क्लासरूम में हो, भोजन की टेबल पर हो, कोई सेवा पर हो, पर हमारी उपस्थिति उस कुल की सुंदरता को बढ़ा दे। तो जब हम क्लास में भी बैठते हैं तो ऐसे बैठें जो क्लास सुंदर लगे, ठीक है ना। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज की मुरली के आधार पर ही तीन बातें विशेष रूप से। एक बात स्वच्छ बुद्धि, दूसरा किस्मत, और तीसरा राजयोग से हम प्रिंसेस बनते हैं। तो पहली बात स्वच्छ बुद्धि। तो बाबा ने आज कहा कि इस ज्ञान की धारणा स्वच्छ बुद्धि में ही हो सकती है। तो पहला प्रश्न उठता है कि क्या अर्थ है इसका, ज्ञान की धारणा स्वच्छ बुद्धि में हो सकती है। ज्ञान की धारणा, धारणा जीवन में होनी है या बुद्धि में होनी है, जीवन में या बुद्धि में? बुद्धि में होगी तो जीवन में आएगी। और बुद्धि में धारणा का मतलब क्या है? समय पर याद आए, बिल्कुल ठीक बात है। एक होता है कि हमें, यूं तो सभी को ज्ञान है, सभी को ज्ञान है ना, तभी तो हम यहां बैठे हैं। ज्ञान थ्योरेटिकली समझ हम सबको है, लेकिन अगर वो ज्ञान हमें समय पर याद नहीं आता, कभी कभी याद भी आ जाता है, ऐसा भी शायद कभी अनुभव किया होगा कि याद भी आ जाता है लेकिन वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता है। जैसे कहते रहेंगे कि मान लो मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, लेकिन वो आत्मा स्थिति में स्थित हो, आत्मा के स्वरूप में, आत्मा के स्वधर्म में स्थित हो, वो नहीं होता है। ड्रामा तो कहते हैं कि चलो ड्रामा में इसका पार्टी ऐसा है या मेरा पार्टी ऐसा है, लेकिन ऐसा कहते हुए भी हलचल की स्थिति होती है या अशांत स्थिति होती है। तो बुद्धि में ज्ञान धारण अर्थात कि हमें वो समय पर न केवल याद आए पर उसका प्रयोग प्रैक्टिकली हम ऐसा कर सकें कि हमारी स्थिति अचल, अडोल, जिसको बाबा ने कहा था आज, स्थिर और हर्षित मुख हो, ऐसी स्थिति हो। तो उसके लिए चाहिए हमको स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ बुद्धि, बुद्धि की, जब बुद्धि का शब्द बाबा यूज करते हैं तो बहुत सारे समय प्रति समय अलग अलग एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, विशाल बुद्धि, तीव्र बुद्धि, है ना, दूरदेशी बुद्धि, या फिर पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, डल बुद्धि, कई प्रकार की बुद्धि, भैंस बुद्धि भी बाबा कहते हैं कभी कभी, बंदर बुद्धि भी कहते हैं, कई प्रकार के टाइटल्स बाबा, विशेषण बाबा बुद्धि के साथ यूज करते हैं। और आज बाबा ने यूज किया स्वच्छ बुद्धि। तो बुद्धि की स्वच्छता कैसे होती है? स्वच्छ बुद्धि, क्योंकि बाबा बहुत बार मिसाल देते हैं दूध का, कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। आम दूध भी अगर बर्तन गंदा हो तो दूध खराब हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए लोग भक्ति में मिसाल देते हैं, वही बूंद होती है जब मिट्टी पर गिरती है तो मिट्टी जैसी बन जाती है, सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, सांप के मुख में चली जाए तो जहर बन जाती है। बूंद वही होती है, बाबा की ज्ञान की बूंदें वही हैं, लेकिन स्वच्छ बुद्धि में जाती हैं तो वो मोती बन जाती हैं। यानी उस ज्ञान की हमको बहुत वैल्यू, कदर हो जाती है, और जितनी उसकी कद्र होती है उतना हमको नशा चढ़ता है। और अगर अस्वच्छ बुद्धि हो तो वही ज्ञान का मिस इंटरप्रिटेशन होता है, यानी कि वही ज्ञान की बूंद जैसे कि जहर का रूप ले लेती है, है ना। उसका अगर मिस इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम खुद को भी मिस गाइड कर देंगे, गलत रास्ते पर ले जाएंगे, गलत समझेंगे तो गलत ही काम करेंगे ना हम, और समझेंगे कि मैं तो ज्ञान के अनुसार ही कर रहा हूं। ज्ञान के अनुसार नहीं कर रहे, वो गलत समझ के कर रहे हैं ज्ञान को। ड्रामा ड्रामा निश्चित है तो ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, तो ये गलत समझ हो गई ना। तो गलत समझ हो गई तो गलत कर्म हो जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि स्वच्छ है तो वो ही ज्ञान की, सिंपल ज्ञान की बातें मोती का रूप ले लेती हैं। तब आत्मा को रियलाइज होता है, जैसा बाबा कहते हैं कि हर ज्ञान का बोल एक एक लाख रुपए का है। अब कितने सारे बोल एक दिन में हम सुनते हैं तो कितने लाखों की कमाई हो जाती है। और अगर सचमुच एक एक लाख रुपए का हमको फील होता है तो ज्ञान सुनते समय, मुरली सुनते समय हम अपनी बुद्धि को अलाउ नहीं करेंगे कि कहीं इधर उधर जाए। जैसे कोई बिजनेसमैन है, शॉप पर अपनी अगर बैठा है तो उसे पता है कि इस समय बहुत कमाई हो रही है, हर ग्राहक आता है और लाखों उसके हाथ में आता है, तो क्या होगा? अपनी बुद्धि को यहां वहां जाने नहीं देगा वो, और क्लास में सोने की तो फिर बात ही नहीं, सोएंगे तो उतर निकल ही जाएगा हमारी बुद्धि से, हम अपने को सोने नहीं देंगे। फिर अगर नींद आने भी लगेगी तो थोड़ा सा कान खींच के अपने को जगा लेंगे, क्यों? क्योंकि लाखों की कमाई हो रही है। पर स्वच्छ बुद्धि होगी तब यह महसूस होगा। अगर बुद्धि स्वच्छ नहीं है और हमारी बुद्धि और मन, बुद्धि के पीछे मन कहीं कहीं भागने लगता है तो भाग रहा है तो भागने दो, या बुद्धि सुषुप्त अवस्था में आ गई तो आने दो, नींद आ गई तो आने दो, हम उसको जागृत अवस्था में भी लाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन स्वच्छ बुद्धि होगी, कोई कारण से आलस्य आने भी लगेगा तो हम आने नहीं देंगे उसको, बैठे बैठे आ रहा तो हम बाहर भाग के जाके आंखें धो के आ जाएंगे। ये स्वच्छ बुद्धि वाला करेगा। और स्वच्छ बुद्धि का बाबा ने आज आधार बताया, कौन सा? स्वच्छ बुद्धि कैसे बनती है? किस पर? शुद्ध घमंड, वो उसका रिजल्ट है, वो उसका रिजल्ट है। लेकिन स्वच्छ बुद्धि का आधार क्या है? वो है श्रीमत। श्रीमत पर चलने वालों की ही बुद्धि स्वच्छ होती है, क्योंकि बाबा तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है ना, परम पवित्र है। बाबा की बुद्धि परम पवित्र है। बाबा को बुद्धि है ना? तो बाबा बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, परम पवित्र है, तो परम पवित्र की मत हमारी बुद्धि को स्वच्छ बना सकती है। तो उसकी मत क्या है वो हमको बार बार अपने आप को रिवाइज करना होता है। जिसको, जिससे मैं कनेक्ट करना चाहती हूं, अब ब्रह्मा बाबा ने वही ज्ञान सुना जो हम सुन रहे हैं, है ना, वही वाला ज्ञान सुना। आज बाबा ने कहा कि जब उसने सुना तो वो और प्रकार का था, उसकी यानी जो फीचर्स थे वो डिफरेंट थे, और जब सुन के वो पावन बन गया तो फिर वो डिफरेंट थे, तब पतित था तब पावन था, पावन हो गया। तो ब्रह्मा बाबा ने वही ज्ञान सुना, हमने भी वही सुना, वही सुन रहे हैं और कितनी बार रिवाइज कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को तो रिवीजन का मौका ही नहीं मिला, उन्होंने तो हर मुरली एक ही बार सुनी, हमने तो कितनी बार ही सुन ली, लेकिन वो एक ही बार ही सुन करके सतयुग के फर्स्ट प्रिंस बन गए। क्यों? स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि। और स्वच्छ बुद्धि अर्थात जिसको आज बाबा ने वरदान में कहा कि मंजिल सदा सामने है। स्वच्छ बुद्धि, जैसे स्कूल में हम पढ़ते हैं, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो मंजिल सामने होती है, मुझे क्या बनना है। ब्रह्मा बाबा को ये कभी भी भूलता नहीं था, मुझे क्या बनना है, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं ब्राह्मण क्यों बना हूं, क्यों बना हूं। जब हम पहले जिस दिन डिसाइड किया था हमने कि मुझे ब्राह्मण बनना है, तो क्या सोच के डिसाइड किया था? तब हमने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि इसको देखने के लिए, उसको देखने के लिए, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसको सुने, उसको सुने, उसको देखें, उसको देखें, नहीं, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन जैसे दादी कहती हैं, बाबा भी कहा करते थे और मामा भी, कोई कुछ भी कर रहा है, आपका इससे क्या जाए। और अगर मुझे यही कंसर्न रहता है, बुद्धि में यही घूमता है कि वो क्या कर रहा है, तो माना बुद्धि स्वच्छ नहीं है, अस्वच्छता आ गई ना। अब अस्वच्छता आ गई तो मंजिल तो दूर चली गई, मंजिल की हमको स्मृति नहीं, फिर हम इसकी उसकी बातों में ज्यादा चले जाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं किया, फॉलो फादर, फॉलो फादर माना कोई कुछ भी करे, चाहे हम बहुत पुराना है लेकिन उसमें कोई प्रकार की धारणा नहीं है जो हमारे में है, मान लीजिए बहुत अच्छी बात है, परंतु उस पुराने में क्या है जो हमारे में नहीं है। जगदीश भाई साहब बहुत बार कहा करते थे कि कोई पुरानी पुरानी शुरू शुरू की माताएं अनपढ़ थे, लगभग चौथी पांचवी क्लास पढ़ा होगा उन्होंने, उनको मतलब इतना जिसको कहना चाहिए ना, बहुत हाई क्लास, बड़े बड़े लोगों से बात करने के हो सकता है मैनर्स नहीं है उनको, हो सकता है किसी को, बड़ी गहरी गहरी बातें उनको समझ में नहीं आती है, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है। और अभी हम नए नए आए, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, बड़े अच्छे अच्छे मैनर्स हैं, हम बात को समझ सकते हैं, बात को गहराई से कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पुराने पुराने इतना अटल निश्चय से न टिकते तो सेंटर नहीं खुलता। सेंटर खुला उनके कारण, सेवा शुरू हुई उनके कारण, सेवा जमी उनके कारण। तो अगर हम उनकी जो कमियां हैं उस पर फोकस कर लेते हैं तो हमारी बुद्धि अस्वच्छ हो जाती है, अस्वच्छ हो जाती है। उनके अंदर जो अटल निश्चय है, जो उन्होंने सहन किया, जो उन्होंने त्याग किया, जो उन्होंने संस्कार को परिवर्तन नहीं किया, लेकिन जो उस समय का त्याग और तपस्या थी, जो उस समय की सहन करने की बातें थी, जो उस समय के विघ्न थे उनको टालने की बात थी, अभी तो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वच्छ बुद्धि माना हम किसी को नहीं देखते हैं, देखते हैं सिर्फ सीखने के लिए। और दूसरी बात, स्वच्छ बुद्धि माना जिसमें कभी भी अहंकार ना हो। इसको आज बाबा ने कहा कि अहंकार नहीं मगर शुद्ध घमंड, घमंड माना नशा। ब्रह्मा बाबा ने जब कुछ भी किया करणहार की स्थिति में किया, मैं केवल निमित्त हूं, केवल निमित्त हूं। थोड़ा भी अहंकार आया तो बुद्धि अस्वच्छ हो गई, अपनी योग्यता का अहंकार, अपनी विशेषताओं का अहंकार, कोई भी प्रकार का, तो वो धारण नहीं होगा फिर ज्ञान। कोई हमारे अहंकार को चोट लगा देगा तो हमारी स्थिति फौरन डाउन चली जाएगी। जब अहंकार होता है तो एप्रिसिएशन की इच्छा होती है, कोई हमको एप्रिशिएट करे, कोई हमारी प्रेज करे, हमने इतना काम किया कम से कम इतना तो कोई वाह, किसी ने वाह किया ही नहीं और ही कह दिया आपने ये क्या सारा कुछ गलत कर दिया काम। 10 काम ठीक किए उसकी प्रेज किसी ने नहीं की, एक छोटी सी गलती हो गई उसके लिए डांट दिया हमको, तो हमारी स्थिति डाउन चली जाएगी। तो ये किसका रिजल्ट है? बुद्धि स्वच्छ अभी पूरी नहीं है। तो स्वच्छ बुद्धि में ज्ञान धारण होगा माना अवस्था अचल अडोल स्थिर हर्षित मुख होगी कॉन्स्टेंटली, ठीक है ना। तो उसके लिए श्रीमत क्या है अभी हमको ये चेक करना है अपने आप को, और ये देखना कौन सी परिस्थितियां आती हैं जिसके कारण मेरी स्थिति थोड़ी सी हिल जाती है। एक वीक का ऐसा अपना प्रोग्राम बनाएं, नोट करें इस चीज को, किन परिस्थितियों में मेरी स्थिति थोड़ी सी अशांत हो जाती है, मेरे चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो जाती है, किसी के प्रति इरिटेशन हो जाता है, किस परिस्थितियों में होता है। तो उन्हीं परिस्थितियों में मुझे विशेष अटेंशन देना है। ब्रह्मा बाबा जो बाबा के सामने थे वो सब सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा मुरली में भी कभी कभी हम लोग सुनते हैं, खुद अपने पुरुषार्थ की कहानी बताया करते थे, मैं कैसे करता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही था, खाना शुरू करता हूं फिर भूल जाता हूं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा 1936 में जब ज्ञान में आए थे, शिव बाबा के बने थे तो ही परफेक्ट थे ऑलरेडी, ऐसा तो नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया था, लेकिन श्रीमत अनुसार शिव बाबा ने कहा है ना, खाना खाते समय मुझे योग लगा के खाना खाओ, तो बाबा शुरू वैसे ही करते थे, श्रीमत फॉलो किया लेकिन फिर भूल गए, फिर याद किया, फिर भूल गए, फिर याद किया। और हम जब शुरू करते हैं खाना तो पूछें योग लगा के शुरू करते हैं या भूख जोर से लगी होती है फटाफट शुरू कर देते हैं, या बातें करते करते खाते हैं, शोर मचाकर खाते हैं। मिसाल के तौर पे श्रीमत से बुद्धि स्वच्छ होती है। तो हर कर्म की श्रीमत, कैसे देखना है, कैसे बोलना है, कैसे सुनना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, हर कर्म की श्रीमत। और इसी से ही फिर आज बाबा ने कहा है किस्मत अपने आप नहीं बनती, कौन बनाता है? हम खुद बनाते हैं। तो बाबा ने कहा खुद नहीं बनती। बाबा ने क्या कहा आज, किस्मत कैसे बनती है? बाप बनाता है। बस इतना ही कहा, और भी कुछ था? टीचर बनाता है। बाप और टीचर का किस्मत बनाने में क्या रोल होता है। तो बाप और टीचर अगर किस्मत बनाते हैं तो सबकी किस्मत एक सी क्यों नहीं होती। किस्मत माना किसकी मत पर चले, किस मत। तो किस मत पर चले हम, बाप भी मत देता है, लौकिक बाप भी, स्कूल में जाओ, होमवर्क करो, ये करो, वो करो, वो भी तो मत देता है ना। अब लेकिन हम ओबीडियंट हैं कि नहीं वो हम पर डिपेंड करता है। टीचर भी मत देता है लेकिन हम उसकी बात को मानते हैं कि नहीं वो हम पर डिपेंड करता है। तो किस्मत ऐसे ही नहीं बन जाती, ऐसे तो किस्मत हम बना के आए हैं। अगर वो गीत है तकदीर जगाकर आई हूं, जगाकर आई हूं और जगाने भी आई हूं, नई दुनिया हम बाबा बोलते हैं, तो वो पिछले जन्म में वो तकदीर जो हमने बनाई थी तो वो भी तो मत पर बनाई थी ना। पिछले जन्म में बाप और टीचर की मत पर बनाई थी, उस बनी हुई किस्मत को लेके हम इस जन्म में आए हैं और अब इस जन्म में हम तकदीर बना रहे हैं अगले जन्म की। मेरा क्या पद होगा, प्रिंस प्रिंसेस का पद होगा या कोई और होगा। अगर मुझे प्रिंस प्रिंसेस वाला पद की किस्मत बनानी है बाप और टीचर की मत पर, तो वो मुझे अभी देखना पड़ेगा ना, वो प्रिंस प्रिंसेस वाले संस्कार। ऐसा नहीं कि हम क्राउन पहन लें, गोल्डन ड्रेस पहन लें, ऐसा नहीं, लेकिन प्रिंस प्रिंसेस वाले संस्कार माना प्रिंस प्रिंसेस मांगते नहीं हैं। उनका सबसे बड़ी विशेषता जो उनके चेहरे पर दिखाई देती है वो कंटेंटमेंट, संतुष्टता दिखाई देता है। रॉयल्टी है ना, रॉयल्टी। वो किसी को नहीं देखते इसके पास ज्यादा है या कम है, वो ब्रह्मा बाबा का संस्कार था। जिस समय यज्ञ में बैगरी पार्ट भी शुरू हो गया लेकिन बाबा ने उस समय भी कुछ चंदा इकट्ठा करना शुरू नहीं किया। बाबा ने कहा मांगने से मरना भला। सेंटर्स तो खुलने, सेवा तो शुरू हो गई, तभी तो हुई बैगरी। वंडरफुल बात तो ये है कि जिस समय बहुत धन था उस समय सेवा शुरू नहीं हुई। उस समय वो 14 साल उन 300-400 भाई बहनों की ही पालना होती रही, लेकिन जब कुछ भी नहीं रहा तब सेवा शुरू हो गई। इंटरेस्टिंग है ना, बहुत कुछ भी नहीं है और सेवा करनी है लेकिन मांगना नहीं है, चंदा इकट्ठा नहीं करना है, कोई फंड इकट्ठे नहीं करने हैं, पर सेवा करनी है। सेवा करनी, सेवा करना माना देने की भावना, सेवा करना ही माना देने की भावना है, और देने की भावना माना रॉयल्टी। ये रॉयल्टी होती है। हम सुनते थे, क्योंकि आपको पता होगा कि जिस सेंटर में मैं शुरू में ज्ञान लिया, वहां जहां से हूं, कमला नगर सेंटर दिल्ली में पहला सेंटर वही था, विश्व का पहला सेंटर है वो, मधुबन के बाद पहला सेंटर। तो वहां सेंटर पे 7-8 दादियां रहती थी, उस समय तो यंग थे वो लोग। तो जो माताएं, कुछ तो था नहीं चीजें, तो पैसा तो है नहीं ब्रह्मा भोजन बनाने के लिए, कि दो प्रकार की भी सब्जी बनाने का तो पैसा नहीं है। सब्जी भी बनती थी बस आलू छोटे 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 जो लास्ट में बोरी में बच जाते हैं ना, वो वाले आलू ले आते थे और आलू पानी में ऐसे तैर रहे होते थे बस, और थोड़ी सी कभी, या तो फिर कोई माताएं ले आई कोई एक कटोरी चावल एक कटोरी दाल, उसकी खिचड़ी बना दिया चलो। तो सुनाती थी माताएं कि जब वो उसी खिचड़ी का ही भोग लगता था, क्योंकि भोग लगाने के लिए हलवा तो है नहीं, खीर तो है नहीं, मीठे चावल तो है नहीं, कोई मालपुड़ा तो है नहीं, जलेबी तो है नहीं, वो खिचड़ी का ही भोग लगता था। लेकिन इतना सा बर्तन, वो उसी में से ही दादियां एक एक चम्मच जो माताएं दोपहर को क्लास करने आते थे उसमें से खिलाते थे। वो कहती थी बहने नहीं नहीं नहीं, ये आप लोग 6-7 लोग इतना सही तो है, इतना सही है, उसमें से 7-8 लोगों को खाना है। नहीं, वो पहले उनको ऑफर करते थे कि ये बाबा का भोग है ना, तो आप पहले इसको स्वीकार करो, इतना इतना ही, एक एक चम्मच ही सही, लेकिन पहले स्वीकार। तो ये देने की भावना, सेवा की भावना, रॉयल्टी का संस्कार होता है। ये मेरे को ही भूख लगी है, मेरे को कम पड़ जाएगा, वो वाला नहीं। लेकिन देखो करते 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 आज कहां तक बाबा की सेवा पहुंच गई, कहां तक पहुंच गई बाबा की सेवा। उस समय का ही मिसाल सुनाते हैं कि जब बहने एक छोटे से कमरे में एक धर्मशाला में रहती थी, अभी मतलब सेंटर ऑफिशियली नहीं खुला था अभी दिल्ली में, छोटा सा कमरा था, बिल्कुल छोटा सा, इतना जैसे ये कमरा है ना ऐसा ही होगा, थोड़ा बड़ा होगा इससे थोड़ा सा। तो उसी में ही तो एक बार एक भाई कोई सेब की पेटी लेके आ गया, फर्स्ट टाइम बैगरी पार्ट में, अच्छे डिलीशियस एप्पल्स, उसका नाम ही डिलीशियस था। तो उसने बहनों को कहा आप मतलब उसको स्वीकार कीजिए। हो कितना समय हो गया, बाबा ने एप्पल नहीं खाया, मामा ने नहीं खाया, सब मधुबन में वहां भाई बहन बैठे हैं, नहीं 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 ये वाला जो पेटी है ना इसको पहले मधुबन में भेजो, इसको पहले मधुबन में भेजो। तो भाई ने कहा नहीं मैं दूसरी खरीद के भेज दूंगा मधुबन में, ये आप लोग तो लो। नहीं 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 इसको पहले मधुबन भेजना है, पहले मधुबन इसको भेजना है। वो जब तक वो भाई जाके रेलवे स्टेशन पर उस पेटी को पार्सल करा के उसका दिखा के रसीद कि ये पार्सल मैंने करा दिया, तब तक उन बहनों ने दूसरी पेटी सेब की स्वीकार नहीं की, इसको पहले मधुबन भेजना है। सेवा की भावना, देने की भावना। तो ये जो रॉयल्टी का संस्कार होता है ना, वो ये होता है। उनके चेहरे से कभी लगेगा नहीं कि इसको कोई प्रकार की कमी है, दो ही ड्रेसेस होंगी लेकिन इतना क्लीन, साफ सुथरा, कुछ फटा हुआ नहीं है, कुछ मैला नहीं है, साफ सुथरा एकदम। कोई समझेगा ही नहीं कि उसके पास दो ड्रेसेस हैं, केवल रॉयल्टी। बाबा भी कहा करते थे कि फट गया ना तो उसको सी लो, लेकिन फटा हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। जगदीश भाई साहब को भाई बाबा ने भेजा, उनके पास पैंट ही नहीं थी, और पता नहीं किसकी, विश्व किशोर दादा थे ना, तो उनकी पैंट वो पुरानी थी, वो तो वो छोटी भी थी, उनको भाई साहब लंबे थे, वही वाली पैंट पहन के कॉन्फ्रेंस में चले गए, और वो भी जाते समय रस्ते में यहां से घुटने से फट गई, साथ में सुई धागा लेके गए थे उसको सिलाई करने के लिए, उसमें कॉन्फ्रेंस में चले गए। मेरी पैंट कोई थोड़ी देखेगा, वो तो मेरे को देखेगा, मुझे क्या सुनाना है, मुझे क्या बोलना है, यानी मेरी स्थिति को देखेगा, मेरी स्थिति को। तो किस्मत कैसे बनती है ना, त्याग तपस्या सेवा से बनती है। बाबा ने ये हमको सिखा दिया, ये ब्रह्मा बाप की भी ये मत है प्रैक्टिकल, और टीचर की तो श्रीमत है ही है, त्याग तपस्या सेवा से किस्मत बनती है। ब्रह्मा बाबा ने अपनी किस्मत जो प्रिंस, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग श्री कृष्ण वाली, और अंतिम जन्म में भी बाबा का बनने से पहले बाबा प्रिंस की तरह ही तो थे ना, तो वो कैसे बनती है। अपने लौकिक जन्म में भी ब्रह्मा बाबा ने, शुरू से आपने कहानी पढ़ी, बहुत दान दिया ना गरीबों को, कुछ है नहीं, साधारण है, माँ बाप की डेथ हो गई, लेकिन कोई गरीब आ रहा है तो उसको फ्री दे दो, कोई बात नहीं, या एक्स्ट्रा दे दो। देने की भावना उस आत्मा में अंत तक रही। तो वो भावना जो है ना, वो हमको बहुत रॉयल प्रिंस जैसा बना देती है। और इस भावना को जितना हम डेवलप करते हैं, उतना हमारे पास फुलनेस, संपन्नता। लक्ष्मी को ऐसा दिखाते हैं ना, वो दिए ही जा रही है, वो उसका खत्म ही नहीं होता। जितना देते हैं वो उतना आता जाता है, आता जाता है। तो जितनी शांति देंगे उतनी शांति आ जाएगी, जितना प्यार देंगे उतना प्यार हमको मिलता जाएगा, जितना ज्ञान देंगे बुद्धि, हाँ, तो उतनी बुद्धि हमारी बढ़ती जाएगी, जितना सुख देंगे हमको सुख मिलता जाएगा, मतलब आता जाएगा हमारे पास। और प्रिंस प्रिंसेस की निशानी है संपन्नता, कोई भी चीज की कमी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए शुरुआत हम करते हैं बुद्धि से। तो ऐसा बनाएं अपनी बुद्धि को कि बाबा की जो बातें हैं, बाबा के जो अनमोल मोती हैं, वो हमारी बुद्धि में और फिर उसके बाद हमारे जीवन में धारण होते जाएं। और अगर बुद्धि और जीवन में धारण हो गए तो मन तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे कंट्रोल में आ जाता है। तो मनमत की फिर बात ही नहीं, तो मनमत मिक्स होने की, परमत मिक्स होने की फिर बात ही नहीं, फिर श्रीमत ही रह जाती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि रात को समय पर सो जाएं, हाँ, लेट नहीं। रात को टाइम पर सोते हैं तो सुबह नींद जल्दी खुलती है टाइम से, अमृत वेला अच्छा होता है, मुरली की क्लास में भी हम फ्रेश होते हैं, क्योंकि बॉडी को नींद तो चाहिए, है ना। अगर लेट सोएंगे तो फिर वो ठीक से होता नहीं काम, बैलेंस बिगड़ जाता है उससे। ओके, ओम शांति।